एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है और सभी सुनने वालों का भी बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की थोड़े अलग तरह की गहराइयों में उतर रहे हैं, एक ऐसी किताब के साथ जो ये नहीं बताती कि कब क्या हुआ, बल्कि ये पूछती है कि क्यों कुछ चीजें मतलब सदियों तक वैसी ही रह जाती हैं। फर्नांड ब्रॉडल की किताब है सभ्यताओं का इतिहास।
हाँ बिल्कुल, और ये किताब जैसा आपने कहा सिर्फ अतीत का कोई लेखा जोखा नहीं है, ये तो आज को हमारे वर्तमान को समझने का एक नजरिया देती है। आज जब लगता है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हर रोज कुछ नया, तब ब्रॉडल हमें उन धीमी पर शायद ज्यादा ताकतवर लहरों को देखने के लिए कहते हैं जो समाज को असल में आकार देती हैं।
सही कहा, मतलब ये आज भी उतनी ही जरूरी है।
मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा।
हाँ, क्योंकि हम अक्सर ना रोज की खबरों में या फिर वो चुनावी नतीजों में या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में उसी में फंसे रहते हैं।
बिल्कुल।
और ब्रॉडल जैसे याद दिला रहे हैं कि अरे सतह के नीचे भी देखो, वहां बहुत कुछ ऐसा है जो लगभग ठहरा हुआ सा है, और वही शायद हमारी दुनिया की असली बुनियाद है।
हाँ वही बुनियाद। तो चलिए इसी सोच के समंदर में थोड़ा गोता लगाया जाए।
जरूर, लेकिन शुरू करने से पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी है ना, फर्नांड ब्रॉडल।
हाँ बिल्कुल, फर्नांड ब्रॉडल 1902 से 1985, 20वीं सदी के फ्रांस के आप कह सकते हैं सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक थे, और वो जुड़े थे एनाल स्कूल से, उसके वो मुख्य चेहरा थे।
एनाल स्कूल, ये नाम सुना तो है, लेकिन इसने इतिहास को देखने का तरीका कैसे बदल दिया? क्योंकि आमतौर पर तो इतिहास मतलब वही राजा रानी, युद्ध, कौन कब जीता हारा, तारीखें।
सही कहा, पहले इतिहास ज्यादातर इसी पर ध्यान देता था, बड़े लोग, बड़ी घटनाएं, लेकिन एनाल स्कूल और खासकर ब्रॉडल ने कहा रुको, असली कहानी सिर्फ इन गिनी चुनी घटनाओं में नहीं है।
अच्छा,
तो फिर कहाँ है? उन्होंने जोर दिया उन चीजों पर जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे सामाजिक ढांचे, आर्थिक व्यवस्थाएं, और सबसे बढ़कर भूगोल, पर्यावरण।
भूगोल मतलब पहाड़, नदियां।
हाँ, और जलवायु भी, ये सब मिलकर कैसे समाज को बनाते हैं। ब्रॉडल ने इसे टोटल हिस्ट्री या समग्र इतिहास कहा, मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो, आम इंसान की रोज की जिंदगी, वो क्या खाता है, कैसे घर में रहता है, व्यापार के रास्ते कौन से हैं, यहाँ तक कि मौसम का मिजाज कैसा है, सब कुछ।
ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और उनका वो सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट लॉन्ग ड्यूरे, हिंदी में शायद दीर्घ अवधि कहते हैं, क्या यही एनाल्स सोच का निचोड़ है?
हाँ बिल्कुल, ये ब्रॉडल की सबसे बड़ी सबसे खास देन है। लॉन्ग ड्यूरे का मतलब है इतिहास का वो सबसे धीमा, लगभग ठहरा हुआ सा स्तर।
ठहरा हुआ स्तर,
हाँ, ऐसे सोचिए जैसे समंदर हो, सबसे ऊपर क्या है, रोज की घटनाएं, वो तो लहरों के झाग की तरह है, आती जाती रहती हैं। उसके थोड़ा नीचे हैं सामाजिक आर्थिक बदलाव, जैसे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, ये थोड़ी धीमी लहरें हैं। और सबसे नीचे गहराई में वहां है बहुत धीमी, लगभग ना बदलने वाली समुद्री धाराएं।
अच्छा,
वही है भूगोल, जलवायु, लोगों की सोचने का ढंग यानी मानसिकताएं, समाज की गहरी संरचनाएं, यही है लॉन्ग ड्यूरे। ब्रॉडल का मानना था कि इतिहास की दिशा असल में यही गहरी धाराएं तय करती हैं, न कि सतह पर दिखने वाला शोर।
वाह, मतलब असली कहानी नीचे चल रही है। तो ये जो किताब है सभ्यताओं का इतिहास, ये इसी नजरिए से लिखी गई है?
ये दुनिया का इतिहास कैसे बताती है फिर? देखिए, ये कोई पारंपरिक विश्व इतिहास की किताब नहीं है जो मतलब ईसा पूर्व से शुरू हो और आज तक की पूरी कहानी एक लाइन से सुना दे, ऐसा नहीं है।
तो फिर
ब्रॉडले यहाँ एक अलग काम करते हैं, वो दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जैसे इस्लाम, चीन, भारत, यूरोप, इनको एक साथ रखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। वो एक तरह से सभ्यताओं का व्याकरण समझने की कोशिश करते हैं।
व्याकरण मतलब जैसे भाषा का व्याकरण होता है?
हाँ कुछ वैसा ही। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से नियम हैं, कौन सी संरचनाएं हैं जो किसी सभ्यता को उसका अपना एक खास चरित्र देती हैं, जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं।
अच्छा, तो इसका मतलब किताब का मुख्य तर्क क्या हुआ, क्या साबित करना चाहते हैं ब्रॉडल इसके जरिए?
उनका मुख्य तर्क आप कह सकते हैं ये है कि किसी भी सभ्यता की असली पहचान, उसकी आत्मा, वो उसकी रोज की राजनीतिक घटनाओं या कौन राजा बना, कौन हारा, इसमें नहीं छिपी होती।
तो फिर कहाँ छिपी होती है?
वो छिपी होती है उसकी गहरी, स्थायी या कम से कम अर्ध स्थायी संरचनाओं में, मतलब वहां का भूगोल कैसा है, समाज किन वर्गों में किन हिस्सों में बटा हुआ है, लोग दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका आर्थिक जीवन किस चीज़ पर टिका है। ब्रॉडल कहते हैं कि इन चीज़ों को समझे बिना हम किसी सभ्यता को या आज की दुनिया में उसके व्यवहार को ठीक से नहीं समझ सकते।
यानी जो चीजें सतह पर दिखती हैं उनसे ज्यादा जरूरी वो चीजें हैं जो गहराई में हैं और धीरे धीरे बदलती हैं या बदलती ही नहीं।
बिल्कुल। और एक और बात कि हर सभ्यता का ना एक तरह का अपना व्यक्तित्व होता है, एक कैरेक्टर होता है जो सदियों में बनता है और फिर आसानी से बदलता नहीं। ये किताब हमें इन्हीं अलग अलग व्यक्तित्वों से मिलवाती है।
चलिए तो फिर किताब के अंदर झांकते हैं। ब्रॉडल ने ये जो अपना विश्लेषण का तरीका बताया इसे अलग अलग सभ्यताओं पर कैसे लागू किया है, शुरुआत कहाँ से करते हैं वो?
किताब की शुरुआत तो वो इसी सिद्धांतिक ढांचे को समझाने से करते हैं। इतिहास के वो तीन स्तर जिसकी हमने बात की, स्ट्रक्चर, कंजंक्चर, इवेंट और लॉन्ग ड्यूरे का क्या महत्व है, फिर वो एक एक करके दुनिया के बड़े सभ्यतागत क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं। जैसे वो इस्लामी दुनिया को लेते हैं और वो उसे सिर्फ एक धर्म के तौर पर नहीं देखते, वो उसे एक चौराहे की सभ्यता के रूप में देखते हैं।
चौराहे की सभ्यता, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब एक ऐसी जगह जो भौगोलिक रूप से बिल्कुल बीच में थी, भूमध्य सागर, हिंद महासागर और एशिया के जो पुराने व्यापार मार्ग थे उनके केंद्र में।
अच्छा,
तो ब्रॉडल कहते हैं कि ये जो आर्थिक और भौगोलिक स्थिति थी ना, वो इस्लाम के फैलाव और उसके चरित्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना कि शायद धर्म खुद था। उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे वहाँ खाना बदोश यानी बंजारे और शहरी संस्कृतियों के बीच हमेशा एक तनाव रहा और कैसे अरबी भाषा और इस्लामी कानून ने मिलकर इस इतने बड़े फैले हुए क्षेत्र को एक पहचान दी। तो ये सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक भू सांस्कृतिक इकाई ज्यादा थी।
ये तो इतिहास को देखने का बिल्कुल ही अलग तरीका है, राजनीति और धर्म से हटकर भूगोल और अर्थव्यवस्था पर इतना जोर।
अच्छा, फिर वो दूसरी सभ्यताओं को कैसे देखते हैं, जैसे चीन या भारत?
हाँ, इसके बाद वो सुदूर पूर्व की बात करते हैं। चीन को वो एक अद्भुत सभ्यता राज्य मानते हैं।
सभ्यता राज्य?
हाँ, मतलब एक ऐसी इकाई जो हजारों साल से चली आ रही है। किसके दम पर? एक बहुत शक्तिशाली नौकरशाही, कन्फ्यूशियस विचारधारा और एक लिखने की व्यवस्था जिसने सबको जोड़कर रखा।
अच्छा, यहाँ भूगोल ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जो बड़ी नदी घाटियां हैं, पीली नदी, यांगसी और उत्तर की सीमा पर जो बाहर से खतरा था खानाबदोशों का, इसने एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था को बढ़ावा दिया। ब्रॉडल के लिए ये लॉन्ग ड्यूरे का एक क्लासिक उदाहरण है हजारों साल की निरंतरता। सोचिए जरा,
हजारों साल। और भारत, वो चीन से कितना अलग नजर आता है इस नजरिए से।
बिल्कुल अलग। अगर चीन एकता का प्रतीक है तो ब्रॉडल भारत को कहते हैं दुनियाओं की दुनिया।
दुनियाओं की दुनिया?
हाँ, मतलब विविधता ही जिसकी पहचान है। यहाँ राजनीतिक एकता तो हमेशा आती जाती रही, कभी कोई बड़ा साम्राज्य बना फिर टूट गया, लेकिन एक चीज जो बहुत गहरी और स्थायी रही वो थी सामाजिक संरचना यानी जाति व्यवस्था। ब्रॉडल दिखाते हैं कि ये व्यवस्था हजारों साल तक अनगिनत हमलों और राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद बनी रही। तो ये दिखाता है कि लॉन्ग ड्यूरे हमेशा राजनीतिक हो जरूरी नहीं, वो सामाजिक भी हो सकती है।
अच्छा,
और साथ ही हिंदू धर्म की जो सबको अपने अंदर समा लेने की क्षमता है और मानसून पर आधारित खेती और जीवन का जो चक्र है, ये सब भी भारत के उस दीर्घकालिक चरित्र का हिस्सा है।
ये तो बहुत दिलचस्प है कि एक ही फ्रेमवर्क, लॉन्ग ड्यूरे, भूगोल, समाज, उससे चीन और भारत की कितनी अलग अलग तस्वीरें उभर कर आती हैं।
अच्छा, और यूरोप के बारे में उनका क्या कहना है? यूरोप को तो अक्सर आधुनिक दुनिया का इंजन माना जाता है।
हाँ, और यहीं पर ब्रॉडल का एक और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार सामने आता है।
वो क्या?
वो कहते हैं कि यूरोप की असली ताकत उसकी परिभाषित विशेषता उसकी एकता में नहीं बल्कि उसकी अनेकता में थी।
अनेकता में? मतलब?
हाँ, देखिए, यूरोप का भूगोल कैसा है, बहुत कटाफटा है, पहाड़ हैं, प्रायद्वीप हैं, द्वीप हैं। इसने किसी एक विशाल स्थायी साम्राज्य को, जैसा चीन में हुआ, वैसा यूरोप में कभी जमने ही नहीं दिया।
हाँ, ये तो है। तो नतीजा क्या हुआ? लगातार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, छोटे बड़े राज्य आपस में लड़ते रहे, होड़ करते रहे, और यही होड़, यही प्रतिस्पर्धा ब्रॉडल के अनुसार यूरोप की गतिशीलता, उसकी तकनीकी खोजों और फिर पूंजीवाद के उदय का असली कारण बनी।
वाह, मतलब उसका बटा हुआ होना ही उसकी तरक्की का राज बन गया।
हाँ, उनका तर्क यही है, उसका विखंडन ही उसकी प्रगति का स्रोत था। रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म ने एक तरह की सांस्कृतिक एकता तो दी, लेकिन राजनीतिक अनेकता बनी रही और वही उसकी डायनेमिज्म का इंजन बनी।
कमाल है, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। मतलब जिसे हम कमजोरी समझ सकते हैं वही असल में ताकत निकली। क्या उन्होंने अमेरिका या अफ्रीका जैसी और दुनियाओं पर भी इसी तरह से नजर डाली?
हाँ, हालांकि किताब के बाद के हिस्सों में थोड़ा संक्षेप में है। उन्होंने अफ्रीका के बारे में जो यूरोप में धारणा थी कि वो बिना इतिहास वाला महाद्वीप है, उसे तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि सहारा के दशांग में भी बहुत पुरानी और जटिल सभ्यताएं थीं, जैसे घाना, माली, सोंघाई। इनका आधार अक्सर व्यापार था, जैसे सोने और नमक का व्यापार। वहां के भूगोल की चुनौतियों की भी बात की।
और अमेरिका?
अमेरिका में उन्होंने पहले कोलंबस के आने से पहले की सभ्यताओं, एच्टेक, माया, इंका, उनकी उपलब्धियों की बात की। और फिर यूरोपीय विजय के बाद कैसे उनका विनाश हुआ और उसके बाद कैसे वहां एक नई मिलीजुली संस्कृति बनी। यूरोपीय, अफ्रीकी, गुलामी के जरिए लाए गए लोग और वहां के मूल निवासियों की संस्कृतियों के मिश्रण से। लेकिन हर जगह उनका जोर उन्हीं गहरी, स्थायी या अर्धस्थायी संरचनाओं पर रहा।
तो ये जो सारे उदाहरण हमने देखे, इस्लाम, चीन, भारत, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इन सबसे जो मुख्य बातें निकलकर आती हैं, जो ब्रॉडल हमें सिखाना चाहते हैं, वो क्या है? उनको थोड़ा समेट सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है, लॉन्ग ड्यूरे की प्रधानता। मतलब इतिहास में असली खिलाड़ी वो धीमी गति से बदलने वाली संरचनाएं हैं। भूगोल, मानसिकता, समाज का ढांचा, रोज की जो घटनाएं होती हैं वो तो बस सतह की लहरें हैं, हमें गहराइयों में देखना होगा।
जैसे हमने भारत के संदर्भ में देखा, राजनीतिक सत्ता बदलती रही पर कुछ सामाजिक संरचनाएं ज्यादा स्थायी रहीं।
बिल्कुल। दूसरी बात, भूगोल सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, वो इतिहास का एक सक्रिय किरदार है। वो तय करता है कि किसी सभ्यता के पास क्या अवसर होंगे, क्या चुनौतियां होंगी।
हाँ, जैसे यूरोप का खंडित भूगोल उसकी प्रतिस्पर्धा का कारण बना, या मध्य पूर्व का चौराहा होना उसके व्यापारिक महत्व का। ये बात तो अपने आसपास भी देख सकते हैं। पहाड़, नदियाँ, समुद्र तट, ये सब आज भी हमारे जीवन को, हमारे समाज को आकार दे रहे हैं।
सही कहा। तीसरा, सभ्यताएं जो हैं वो एक तरह से सामूहिक व्यक्तित्व की तरह हैं। हर एक का अपना अलग मिजाज होता है, अपनी आदतें होती हैं जो सदियों में बनती हैं। जैसे चीन का नौकरशाही पर जोर देना, या भारत की विविधता में भी एक तरह की एकता खोजने की प्रवृत्ति, या यूरोप की वो प्रतिस्पर्धी भावना, ये सब उनके लंबे इतिहास की देन हैं। इन्हें समझे बिना हम आज उनके व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
ये बात भी बहुत अहम है। और चौथा?
चौथा, इतिहास को तीन स्तरों पर देखना जरूरी है। संरचना, जो लगभग स्थिर है, संयोजन, जो मध्यम गति से बदलता है, जैसे आर्थिक चक्र, और घटना, जो बहुत तेज तात्कालिक है। ये नजरिया हमें खबरों की जो तात्कालिकता होती है, जो शोर होता है, उससे परे जाकर गहरी प्रवृत्तियों को पहचानने में मदद करता है। आज की कोई भी बड़ी घटना हो, चाहे वो कोई आर्थिक संकट हो या कोई सामाजिक आंदोलन, उसे समझने के लिए हमें इन तीनों स्तरों को देखना होगा।
यानी सिर्फ आज क्या हुआ ये काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं। और पांचवा, भौतिक जीवन का महत्व। इतिहास सिर्फ बड़े बड़े विचारों और राजनीति का खेल नहीं है, ये जमीन से जुड़ा है। लोग क्या खाते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, किन औजारों का इस्तेमाल करते हैं, व्यापार कैसे करते हैं। ब्रॉडल इन छुट्टी रोजमर्रा की चीजों को इतिहास के केंद्र में ले आते हैं। सोचिए, हमारे खान पान की आदतें ही कैसे हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जोड़ती हैं।
ये सारी बातें वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। ब्रॉडल के कुछ विचार तो ऐसे हैं जो सचमुच दिमाग में गूंजते रहते हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे उनका वो कहना कि सभ्यताएं असाधारण जीव हैं जिनकी लंबी उम्र समझ से परे है। ये उनकी जबरदस्त लचीलेपन और टिके रहने की जो क्षमता है उसकी तरफ इशारा करता है। सदियां बीत जाती हैं, बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं, पर सभ्यता की जो गहरी धारा है वो कहीं ना कहीं बहती रहती है।
और एक और बात जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, भूगोल केवल उसी हद तक नियति है जहां तक वो मानव रचनात्मकता के खेलने के लिए मंच प्रदान करता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
मतलब हाँ, हालात सीमाएं तो तय करते हैं, पर उन सीमाओं के अंदर इंसान क्या कमाल दिखाता है, क्या रचनात्मकता दिखाता है, ये ज्यादा मायने रखता है। ये हमें सिर्फ हालात का रोना रोने से निकालकर कुछ करने के लिए प्रेरित करता है।
बिल्कुल। और एक और जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर आज के दौर में, घटनाएं इतिहास की धूल हैं, असली कहानी गहरी धीमी धाराओं में है।
हाँ,
ये आज की जो 24/7 न्यूज की दुनिया है उसमें एक जरूरी रिमाइंडर है कि थोड़ा ठहर कर, थोड़ा गहराई में जाकर चीजों को देखने की जरूरत है। सब कुछ सतह पर नहीं होता।
और वो यूरोप वाली बात फिर से याद आती है, कितनी काउंटर इंट्यूटिव है। सदियों तक यूरोप का बड़ा फायदा ये था कि उसका कोई एक मालिक नहीं था, उसका विखंडन ही उसकी प्रगति का स्रोत था। ये दिखाता है कि जिसे हम कमी समझ सकते हैं, जैसे एकता की कमी, वो भी कैसे नई ऊर्जा और नवाचार पैदा कर सकती है।
हाँ, और अंत में ये विचार कि हर सभ्यता अपने आप में एक दुनिया है, इंसान होने का एक अनूठा तरीका है, ये दुनिया की जो विविधता है उसके प्रति एक गहरा सम्मान जगाता है। कोई एक तरीका सही या गलत नहीं है, बस अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है।
ये सारे विचार सिर्फ अकादमिक या किताबी नहीं लगते, इनका आज की दुनिया से, हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी कुछ लेना देना है। इन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, बहुत तरीकों से। सबसे पहले तो जैसा हमने पहले भी कहा, समकालीन दुनिया को, आज की राजनीति और समाज को समझने के लिए, आज के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे चीन का उदय है, या मध्य पूर्व में जो तनाव चलते रहते हैं, या यूरोपियन यूनियन की चुनौतियाँ, इनकी जड़ें अक्सर ब्रॉडल की बताई हुई उन गहरी सभ्यतागत संरचनाओं और लंबे इतिहास में होती हैं। सिर्फ आज के नेताओं के बयानों या तात्कालिक घटनाओं से पूरी बात समझ नहीं आती।
हाँ, ये लंबी अवधि वाली सोच हमें खबरों के शोर से आगे देखने में मदद करती है, पैटर्न पहचानने में मदद करती है, और व्यापार या अर्थव्यवस्था में इसका कोई इस्तेमाल है?
वहाँ भी है। बिजनेस की दुनिया में अक्सर लोग बहुत शॉर्ट टर्म मुनाफे या तिमाही नतीजों पर ध्यान देते हैं। ब्रोडल हमें सिखाते हैं कि अगर किसी बाजार को लंबे समय के लिए समझना है, तो वहाँ की संस्कृति, लोगों की आदतें, समाज का ढांचा, यानी वहाँ की लॉन्ग ड्यूरे को समझना बहुत जरूरी है।
अच्छा,
जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर भारत में कोई प्रोडक्ट लाना चाहती है, तो उसे सिर्फ यहाँ की अर्थव्यवस्था का साइज नहीं देखना होगा, बल्कि यहाँ के लोगों की गहरी सांस्कृतिक मान्यताएं, पारिवारिक संरचना, खान पान की आदतें, इन सबको समझना होगा, तभी वो सफल हो पाएगी। ये चीजें रातों रात नहीं बदलती।
यानी सांस्कृतिक समझ सिर्फ अच्छी बात नहीं, बल्कि व्यापार के लिए भी जरूरी है, और कूटनीति या अलग अलग देशों के बीच आपसी समझ के लिए।
बिल्कुल, सांस्कृतिक समझ और डिप्लोमेसी में तो ये नजरिया बहुत ही काम का है। ये हमें सतही स्टीरियोटाइप्स या पूर्वाग्रहों से बचाता है। ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग समाज दुनिया को अलग तरह से क्यों देखते हैं, उनके मूल्य क्या हैं, वो किसी स्थिति पर अलग तरह से प्रतिक्रिया क्यों देते हैं।
हाँ, जैसे भारत की ही विविधता को लें, बाहर से देखने पर ये शायद बहुत जटिल या कन्फ्यूजिंग लगे, पर ब्रॉडला के नज़रिए से देखें तो ये इसकी हजारों साल पुरानी पहचान का, उसकी लॉन्ग ड्यूरे का हिस्सा है। इसे समझना ज़रूरी है।
सही कहा, ये समझ बेहतर बातचीत और सहयोग की नींव रखती है।
और क्या, ये सोच हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ सिखा सकती है अपने जीवन में?
क्यों नहीं, बिल्कुल। व्यक्तिगत जीवन में ये हमें शायद थोड़ा धैर्य सिखाती है।
धैर्य कैसे?
ऐसे कि हमारे जो छोटे छोटे रोज के काम हैं, हमारे प्रयास हैं, हो सकता है उनका नतीजा तुरंत ना दिखे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरे के नजरिए से देखें तो लगातार किया गया प्रयास धीरे धीरे ही सही बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये हमें थोड़ा विनम्र भी बनाता है। ये याद दिलाता है कि हम सब इतिहास की एक बहुत बड़ी, बहुत धीमी बहती हुई धारा का एक छोटा सा हिस्सा हैं। न तो सब कुछ हमसे ही शुरू हुआ है और न ही हमारे साथ खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है।
तो इस पूरे बातचीत का सार क्या निकलता है? इस गहरी पड़ताल से सबसे बड़ी सीख क्या लेकर जा रहे हैं?
मेरे लिए तो शायद यही एहसास सबसे बड़ा है कि हम सब, हमारा समाज, हमारी संस्कृति कितनी गहरी और कितनी पुरानी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ये चीजों को देखने का नजरिया बदल देता है, थोड़ा ठहराव लाता है सोच में।
हाँ, और मेरे लिए जो सबसे बढ़िया, कहूँ कि आश्चर्यजनक बात थी, वो ये कि कैसे ब्रॉडल ने इतिहास के मंच पर उन किरदारों को हीरो बना दिया जिन्हें अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है, जैसे भूगोल, जलवायु, रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजें।
सही कहा, ये हमें सिखाता है कि असली ताकत, असली बदलाव अक्सर उन शांत, स्थायी, गहरी चीजों में छिपा होता है जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये किताब सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं है, बल्कि दुनिया को और खुद को समझने का एक शक्तिशाली औजार है, एक ऐसा नजरिया जो हमें ज्यादा गहराई से और शायद ज्यादा धैर्य से चीजों को देखना सिखाता है। और मुझे लगता है कि आज के इस तेज रफ्तार दौर में शायद हमें इसी नजरिए की सबसे ज्यादा जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।